प्यारी सत्संगत प्यार से बोलिए। सत्संगत अभी तक आपने संतों के प्रवचनों का आनंद लिया। हर किसी ने अपने अपनी भाषा में सतगुरु की महिमा का जिक्र किया और साथ साथ दुनिया वालों को भी उनका भी सामने चित्र खींचा। दुनिया में भी जो कुछ है वो भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और संत जो ये सत्य की आवाज़ लेकर जगह जगह घूम रहे हैं वो भी आप संत जन आनंद ले रहे थे। ज्ञान वस्तु केवल नाम नहीं है, जानकारी का नाम है। प्रभु परमात्मा की जब जानकारी हो जाती है, जिसको हम वैसे भी देखें कि किसी को जानते होते हैं, कोई बात हमारे सामने करता है तो हम कहते हैं हाँ जी मुझे अच्छी तरह उसका ज्ञान है। इसी तरह जिसको प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार वाहेगुरु गॉड अल्लाह नाम से पुकारते हैं, इसकी जानकारी का नाम ही ज्ञान है। इसी की चर्चा आज संत महापुरुष कर रहे थे। इसमें शकनी के भाषा का अलग सा तरीका, और बात चाहे समझ आए ना आए ये तो सबको आ रही थी, सतगुरु निराकार साध संगत, यही साध संगत भक्ति गुरसिख की होती है। जिसको भी ये निराकार सतगुरु याद रहता है, साध संगत याद रहती है, वो फिर दुनिया में भटकता नहीं, उसको सहज अवस्था मिल जाती है, आराम मिल जाता है। वही फिर जैसी आवाज़ को आगे आगे ले जाता है। दुनिया में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो साध संगत हमें समझ भी नहीं आती कि क्या कर रहे हैं, पर जब पूर्ण सतगुरु का उपदेश नहीं मिलता समझ भी नहीं आती। एक बात याद आ गई इसी पे कि कोई नौजवान था, उसको चोरी की आदत थी, तो इसी तरह किसी महात्मा के पास कोई ले गया कि ये चोरी करता है। महात्मा ने कहा कि अच्छा छोड़ नहीं सकता, कहते नहीं मैं नहीं छोड़ सकता इसको। कहने लगे फिर एक दो बातें मेरी याद रख ले, एक कहा कि झूठ नहीं बोलना, दूसरी बात कही कि किसी का नमक खाकर आराम नहीं करना, और तीसरी बात कही कि गरीब मार भी नहीं करना, और एक चौथी बात साथ कह दी कि नंगर का पर्दा ढाकना। कहता मुझे ये शर्तें मंजूर है। एकदम तैयार होकर राजे के महल में चला गया। दरबार ने पूछा कौन है, कहने लगा मैं चोर हूँ। वो डर गया, इतने अच्छे कपड़े पहने हुए, दुशाला सा मोढ़े पे ओढ़ा हुआ, उसने छोड़ दिया, अंदर चला गया। आगे फिर रोका, कौन है आप? कहता मैं चोर हूँ। वो भी पीछे हट गया। इसी तरह करते करते महल में पहुँच गया। जितना भी कीमती सामान था वो बांध लिया। जब बांध कर चलने लगा तो कहने लगा कि राजा के घर तो बड़े बड़े पकवान होते हैं, रसोई घर से कुछ खा ही लूँ। जब वहाँ गया, एक डिब्बा खोला तो मुंह में डाला तो उसमें नमकीन सी वस्तु थी। कहने लगा कि महात्मा ने ये भी कहा था कि किसी का नमक खाकर हराम नहीं करना। क्या किया कि वो गठरी बंदी बंधाई उधर छोड़कर चल पड़ा कि मैंने इसका नमक खा लिया। जब आगे बढ़ा तो देखा कि राजे की बेटी जो थी सोई थी, उसके ऊपर से कपड़ा नहीं था तो अपना दुशाला लेकर उसके ऊपर दे दिया जो कंधे पे डाला हुआ था। इसी तरह बाहर चला गया। सुबह शोर मच गया, सामान भी बांधा पड़ा है, रसोई घर भी खुली है और दुशाला भी नवा सा ऐसा कोई दिया हुआ है। इसी तरह नगर में सबको बुलाया गया कि राजन के दरबार में पहुंचो। जब पीट मार शुरू हुई तो ये पहुंच गया, क्योंकि ये भी उसने सुना था कि मुझे ये भी महात्मा ने कहा कि गरीब मार नहीं होने देनी। चला गया, राजन इन सबको छोड़ दो, ये काम मैंने किया है। राजन ने पूछा तूने कैसे किया? सारी बात बता दी। कहने लगा कि ऐसा नेक इंसान मुझे कहाँ से मिलेगा, अपने पास ही रख लिया। ये महात्मा की बात मानने का उसको इतना फल मिला। तो जिसको पूर्ण सतगुरु मिला हो तो आप जानते हैं कि इसमें तो कोई कमी रह ही नहीं सकती। जब भी कोई कमी आती है हमारे में आती है, हम कहते हैं कि ये अंतर्जामी है, घट घट की जानता है। पढ़ते भी हैं कि घट घट की अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। ये सब की जानता है। जैसे हम देखते हैं कि हम चेहरे से ही भाप लेते हैं दूसरे को, कोई बीमार भी होता है तो हम कहते हैं तेरी तबीयत ठीक नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है। हम कहते हैं हाँ जी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। जब खुशी होती है तो फिर भी चेहरे से दिखाई देती है। हम कहते हैं क्या बात है भाई, कोई लॉटरी तेरी निकल आई, बड़ा खुश नज़र आ रहा है। उदास चेहरा हो तब भी, खुशी हो तब भी, चेहरे से पता चल जाता है। इसी तरह ही जब संतों के चेहरे खिले होते हैं, जब सतगुरु के दर्शन होते हैं तो कितने बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक चेहरे इतने खिले हुए दिखाई देते हैं। एक एक का हृदय जो प्रसन्न होता है तभी सत्संग चेहरे पे खुशी आती है, वैसे नहीं आती। वैसे भी कहा है कि एक इसी तरह ही कोई गा रहा था कि दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा, जो अंदर होता है वो चेहरे पे दिखाई दे जाता है। इसी तरह संत महापुरुष जब इनके चेहरे खिले हुए देखते हैं, जब सामने आते हैं तो दूर से हाथ जुड़ जाते हैं, पता चल जाता है कि वाकई ये गुरसिख है। गुरसिख उसको कहते हैं जो पल पल गुरु की शिक्षा को हासिल करते हैं और मनमुख उसको कहते हैं जो मन के कहने पे चलते हैं। आप जानते हैं मन तो कभी भी किसी को सीधे रास्ते पे नहीं लेकर जाता। इसकी उडारी तो इतनी ऊंची होती है जैसे कहा है कि कभी जीवड़ा ऊप चढ़त है, कभी जाए प्याले, लोभी जीवड़ा थिर न रहे तो चारे कुंटा भाले। ये इतना लुभाए मान होता है, सब जगह घूम जाता है। ये तो ऐसी ऐसी तरफ इंसान को लेकर जाता है, ऐसा नाच नचाता है कि ये संभल भी नहीं पाता। इसीलिए कहा कि मन बेचे सतगुर के पास, तिस सेवक के कारज रास। क्या जो अपने मन को गुरु के हवाले कर देता है उसके सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तो आओ सत्संगत, हमारे कितने ऊंचे भाग हैं। ऐसे घोर कहते हैं कलयुग निकल गया, पर सत्संग अभी भी दिखाई तो कलयुग ही दे रहा है। ऐसे समय में सत्संगत हमें पूर्ण महात्मा मिला जिसने हमारे जीवन को सवार के रख दिया। अपने आप नहीं होता, हमें ऐसे भी कहने वाले कह देते हैं भक्ति करते चलो कभी ना कभी तो मिल जाएगा। कभी ना कभी कैसे मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले में मिल जाएगा। पता नहीं अगला जन्म हमें कौन सा मिलता है, कौन सी जूनी में जाते हैं, 84 लाख जूनी है ये आत्मा, पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगी, किस तन में जाएगी, भैंस के दान में जाएगी, कुत्ते के जाएगी, सर्प के जाएगी, ये गिनते चलें तो सत्संग गिन नहीं पाएंगे। तो फिर कैसे मिलेगा ये सत्संग, इंसानी जामे में ही प्रभु की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए ये संत आपो अपनी भाषा में यही बता रहे हैं। तो आओ सत्संगत, कृपा करना कि संतों का संग मिलता रहे। संतों का संग मिलता रहा तो सत्संगत जिंदगी का हर पहलू वो सत्संगत सुहाना सा गुजरेगा। सत्संगत जी धन्यवाद।